శాంతి. గుడ్ ఈవినింగ్. బట్టి కో ఎంజాయ్ కర్ రే హో ఔర్ సంగమ్ యుగ్ కే బ్రాహ్మణ జీవన్ కో వో భీ ఎంజాయ్ కర్ రే హో. గీత మే సునా నా కి జబ్ సే హమ్ తుమారే తుమ్ హమారే హో గయే క్యా హువా కిత్నే కాంటే భీ ఫూల్ బన్ గయే. कौन कौन से काटे फूल बन गए और क्या क्या फूल बन गया. बहुत मुश्किलें थी, तकलीफें थी, बना कि नहीं बना कुछ, तो क्या बना. जीवन अच्छा बन गया. संगम युग में बाबा मिल गए तो क्या क्या प्राप्तियां हुई. डर नहीं, डर निकल गया और मरने से भी डर नहीं लगता. शक्तिशाली बन गए. भगवान ही मिल गए और क्या बाकी रहा. चिंता मुक्त, चिंता से भी मुक्त हो गए. स्वमान में रहने लगे. कौन सा जीवन हो गया. खुशियां ही खुशियां हो गई. खुशहाल जीवन हो गया. अब तो से फारीक हो गए. देखो मतलब सारे गम ही खत्म हो गए है ना. कितनी सारी प्राप्ति है ना. गिनती करते जाओ तो वो हमारा हो गया और क्या बाकी रहा है ना. योग, योग किसको कहेंगे. योग के बहुत सारे फायदे होते हैं लेकिन सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा पूरे कल्प में केवल अभी ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है ना. कितना बड़ा फायदा है. परमात्मा खुद मिल गया, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया. इतनी सारी प्राप्तियां है फिर भी कभी कभी मन में प्रश्न आते हैं कि मैं तो इसके साथ इतना अच्छा रहती हूं लेकिन ये तो मुझे अपमान कर देता है. होता है कभी इंसल्टिंग फील होता है, कभी इग्नोर कर का फील होता है कि मुझे इग्नोर कर दिया. कभी कभी ऐसे होता है कि हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते मेरी सेवा को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है. मैं तो लगी हूं लेकिन कोई मुझे ये भी नहीं कहता कि अच्छा तुमने इतनी सारी सेवा कर ली. होता है ऐसे, आता है कभी कभी, आता है. कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा है, कभी भी ऐसे लगता है कि मुझे चांस मिलना चाहिए, मैं उसके लायक हूं, लेकिन मुझे चांस नहीं मिलता है, किसी और को मिल जाता है। आता है ना बुद्धि कभी कभी? कभी सोचा है ये सारे प्रश्न क्यों आते हैं हमारे बुद्धि में? बाबा से लिंक टूट जाती है और संतुष्टता की कमी, लेकिन एक होती क्यों है, ये प्रश्न आते क्यों है? देह विमान में आ जाते हैं क्या? बाबा से फुलफिल नहीं किया, बाबा की युक्ति नहीं याद आती। देखो ये सारी जो प्रश्न बोले ना, ये बुद्धि में आते हैं, हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, सामने वाले ने मुझे मान देना चाहिए, सामने वाले ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, सामने वाले ने मुझे नोटिस करना चाहिए, सामने वाले ने मुझे चांस देना चाहिए, है ना? तो हम हर चीज दूसरों की नजरों से अपने आप को देखने लग जाते हैं, इसलिए प्रश्न आता है। होना क्या चाहिए? किसकी नजरों में हम आ गए? तो किसकी नजरों में आ गए? स्वयं भगवान की नजरों में आ गए, बाबा की नजरों में आ गए। तो देखो कितनी सारी 800 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से बाबा की नजर केवल मुझ एक आत्मा पर पड़ी, तो उसने कुछ तो देखा होगा ना, भगवान ने मेरे में कुछ तो देखा होगा, इसलिए इतनी सारी आत्माएं हैं, उसमें से केवल मेरे ऊपर उनकी नजर पड़ी। अगर हम वो देखने लग जाए ना कि भगवान की नजर में मैं क्या हूं, बाबा की नजरों में मैं क्या हूं, तो ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, उनका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो अभी एक मिनट अपने आप को लीजिए और थोड़ा सा याद कीजिए कि मेरे में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसके कारण भगवान ने मुझे चुना होगा, बाबा ने मुझे चुना होगा, हर एक में होगी। 5 चीजों को याद कीजिए और अपने डायरी में लिखिए। हर एक के पास डायरी है? भट्टी में आया है ना, तो भट्टी होती है परिवर्तन करने के लिए, जब तक हम लिखेंगे नहीं परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 चीजें अपने जीवन की जो सबसे भगवान को प्यारी लगी होगी, बाबा ने उन चीजों के कारण मुझे चुना होगा, ऐसी 5 अच्छी चीजें। कोई सहनशील होंगे, कोई बहुत मिठास से भरे होंगे, कोई प्रेम पूर्ण व्यवहार वाले होंगे, कोई साहसी होंगे, कोई दृढ़ता वाले होंगे। जो अपनी है, किताबी बात नहीं, अपनी जीवन देख के अपनी 5 चीजें। अभी अपने जीवन में जो सबसे प्यारा लगता है ना, सबसे प्रिय व्यक्ति लौकिक जीवन में, उस व्यक्ति की एक विशेषता लिखिए, 6वीं, एक अच्छाई उसकी। लौकिक वाली मन अपने संपर्क में आने वाला, चाहे ब्राह्मण होगा, अलौकिक परिवार होगा, चाहे लौकिक परिवार होगा, मतलब साकार दुनिया का, जो मुझे सबसे प्यारा लगता है। अभी जो सबसे बुरा लगता है ना, हर समय जब उसका ख्याल आती है एकदम से कड़वाहट आ जाती है, नफरत आ जाती है, उस व्यक्ति की भी एक अच्छी बात लिखी है। और 7वां, हो गए जिनके साथ हो गए, देखो बाबा कहते हैं कि आपके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी अच्छाइयां हैं जिससे हम नफरत करते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में कड़वाहट है, उसके जीवन की कोई अच्छी बात, कुछ तो अच्छा ही होगी उसमें भी। तो बाबा हमारी अच्छाइयों के कारण, विशेषता के कारण हमको चुना। और बाबा ये भी कहते हैं कि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखेगी। तो हम सामने वालों में भी वही नोटिस करते हैं जो हमारे अंदर अच्छाई होगी, तो हम उसमें भी अच्छाई ढूंढ पा रहे हैं ना, वो भी हमारी एक अच्छाई है। तो हो गए। अभी सोचिए, देखिए, संगम युग में इस समय बाबा की नजर मुझा का आत्मा पर पड़ी है ना। हमारे आजू बाजू में कितने हैं, है ना, हर एक के आजू बाजू में कितनी सारी आत्माएं हैं, लौकिक में है, कारोबार में है, शहर में है, गांव में है, लेकिन कितनी थोड़ी आत्माओं के ऊपर बाबा की नजर पड़ी है। उसमें भी मैं खुद समझू ना कि केवल मेरे एक के ऊपर पड़ी है, तो मैं विशेष हूं ना, इसलिए भगवान की नजर पड़ी है। तो विशेष हूं, हमने विशेषता भी देखी, क्या क्या विशेषता मेरे में है। लेकिन उन विशेषताओं के आधार से देखो, बाबा ने कितना प्यार से, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को इतना प्यार से एडॉप्ट नहीं करता है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होगी, लेकिन केवल ये 5-6 चीजें देख के भगवान ने मुझे उन कमियों के साथ स्वीकार कर लिया, और वो भी एकदम कैसे, जैसे छोटे बच्चों को गोद में उठा लेते ना, वैसे बाबा ने गोद में उठा लिया, गोद में उठा के नैनों में बसा लिया, और नैनों में बसा के सिर पे ताज रख दिया। कोई होगा पिता इतना प्यार करने वाला? एक बार भी डांट का शब्द नहीं बाबा ने सुनाया, हमेशा मीठे बच्चे कह के रोज हमसे मिलते हैं। तो ये सब होता है केवल इसी संगड़ी पे, संगम युग पे ही। तो ये जो भी हमारा जीवन मिला है बहुत अमूल्य है, जबकि इसी जीवन में आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। और बाबा ने कहा है, बाबा से कब मिल सकते हैं? अमृत वेले मिल सकते हैं, और एनी टाइम। एनी टाइम कैसे? साथ महसूस करके, सर्व संबंधों से, टीएम, एनी टाइम मेडिटेशन, एटीएम। बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है कि दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। तो आज हम बाबा का आह्वान करते हैं, करेंगे सभी, क्योंकि हमारा बाप है ना, हम जब बुलाओ उसको आना ही पड़ेगा, पालना देनी ही पड़ेगी। तो आज इतना पावरफुल रीति से आह्वान करते हैं, दिल की गहराई से बाबा को बुलाते हैं हमारे बीच में, और बाबा से वो मधुर मुलाकात, वो मधुर मिलन जो आत्मा का परमात्मा के साथ होता है, उसका हम अनुभव करेंगे। चलो, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 3 मिनट है ना, तब तक हम ये सोचते हैं कि यहां जहां बैठे हम मधुबन में, है ना, मधुबन भगवान की अवतरण भूमि है, यहां बैठ के भगवान ने इस धरती पर आकर एक एक बच्चे की पालना की, एक एक बच्चे को टोली खिलाया, एक एक बच्चे को आशीर्वाद दिया, शक्ति दी, और यहां से सब जगह सेवाओं में भेजा, और उस स्थान पर हम बैठे। तो यहां बैठे बैठे अगर भगवान को याद करना है, बाबा को याद करना है, आप सब अनुभव कर रहे होंगे दो दिन में, कुछ डिफिकल्ट है? बहुत सहज है, मन में संकल्प आ जाए ऐसे लगता है बाबा के समीपी है। तो अभी हम एकदम पावरफुल रीति से याद में बैठते हैं। पहले ट्रैफिक कंट्रोल का गीत होगा, उसके बाद में एक गीत बजेगा, उस गीत में हम बाबा को बहुत प्यार से आह्वान करेंगे। लाल लाइट लगा दीजिए।
Goodbye.
अनुभव कीजिए डायमंड हॉल का स्टेज, जिस पर दादी गुलजार और बाबा की पद्रामणी हो गई। बाबा दृष्टि दे रहे सभी को, हम दूर कहीं बैठे हैं, बाप दादा की दृष्टि जैसे ही मुझ आत्मा पर पड़ती है, एकदम स्थिर हो जाती है। बाप दादा केवल मुझे दृष्टि दे रहे हैं, अनुभव करें पूरी सभा में बाप दादा मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं। और इशारा कर अपने पास बुलाते हैं। ये बाप दादा के एकदम सन्मुख हॉल का स्टेज, स्टेज के ऊपर बाप दादा के सन्मुख हजारों लोग नीचे बैठे हैं, लेकिन मैं और बाप दादा खो जाइए उन आंखों में, बाप दादा की दृष्टि, विशाल दृष्टि, प्रेम से भरपूर दृष्टि, शक्ति से भरपूर दृष्टि, आनंद लीजिए इस पल का। गुलजारदारी के तन में स्वयं बाप दादा महसूस कीजिए, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों को। बाप दादा अपने हाथों से तोली मेरे मुख में खिला रहे, अनुभव कीजिए उस तोली के स्वाद का। उस मिठास को महसूस कीजिए। फिर बाप दादा अपना वरदानी हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रखते हैं। अपना दाहिना हाथ आगे कर अपने माथे पे रखिए, महसूस कीजिए बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर। आप सभी के पास बाप दादा का वरदान आ गया होगा, आप उसे निकाल कर मन ही मन पढ़ सकते हैं। अपना एक हाथ मस्तक पे रखिए, उस वरदान को मन ही मन पढ़ लीजिए। जिसके पास नहीं आया कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं आया कोई बात नहीं, बाबा का दुआओं का हाथ फील कीजिए, इस पल को मिस मत कीजिए। उस वरदान को, उन दुआओं को अंदर से फील कीजिए, बाबा के वरदानी हस्त के माध्यम से वरदान अपने जीवन में आ रहा है। महसूस कीजिए स्वयं भगवान कहते कह रहे हैं तथास्तु। धीरे से हाथ नीचे लिए, स्वयं स्वयं भगवान ने कहा तथास्तु। जिस पल भगवान ने वरदान दिया उसी पल वरदान मेरे जीवन में फलीभूत हो गया। उस वरदान को मन ही मन दोहराए, बाबा ने क्या वरदान दिया था। उन आशीर्वाद को, उन दुआओं को महसूस कीजिए। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। देखिए उस वरदान के आधार से मेरे कर्म कैसे हो रहे हैं। अपने कर्मों को देखिए। भगवान ने दिया हुआ वरदान, उसके आधार से मेरे कर्म, दानी मूर्त बनने के बाद मेरा लोगों के प्रति व्यवहार कैसे हो रहा है। मेरे सामने जो कोई भी आ रहा है उन वरदान के आधार से स्वयं को धन्य धन्य मान के जा रहा है। परमात्मा वरदान मुझ आत्मा द्वारा उस आत्मा को भी धन्य बना रहे हैं। उस वरदानी मूर्त बनकर अपनी दृष्टि को भी देखिए। मेरी दृष्टि सभी को देखने का नजरिया, लोगों का मेरे प्रति व्यवहार कैसे है जब मैं वरदानी मूर्त बन के बैठा हूं। फिर से पहुंच जाए बाबा के सामने, बाप दादा के सामने। फिर से बाप दादा की आंखों में उस वरदान को देखिए, उस प्यार को देखिए, उन दुआओं को देखिए। दिल की गहराई से, हृदय से बाबा को शुक्रिया कीजिए। मेरा इतना अच्छा जीवन बनाने के लिए, इतना वरदानीय जीवन बनाने के लिए स्वयं का और औरों का कल्याण करने के निमित्त बनाने के लिए बाबा का लाख लाख शुक्रिया। बाबा का हाथ अपने हाथ में लेकर बाबा का विदाई देंगे। थैंक यू बाबा, मेरे बुलाने पे आप आ गए और हमेशा सदा मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। फिर से इस हॉल में महसूस कीजिए, धीरे धीरे इस वर्तमान में आ जाइए। ओम शांति। जब तक अगला क्लास शुरू हो तो आपने जो भी अनुभव किया होगा ना, आपस में आधे मिनट में शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से उस अनुभव को पक्का हो जाएगा। थैंक यू।